તારીખ 16/12/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 689 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 523
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્ર 689 ચાલતા હૈ पत्र तो एक मुमुक्षु का बीज छुपने का प्रसंग पर लिखा गया है, तो उसमें विशेष करके वैराग्य की भावना का विषय चला है। दूसरे पैराग्राफ में कल चलता था कि सर्व संग की अशरणता और बंधुता, अनित्यता और तुच्छता तथा अन्यत्व भाव देखकर अपने आप को विशेष प्रतिबोध होता है कि ये जीव तुझे कुछ भी इस संसार में उदय आदि भाव से भी मूर्छा रहती हो तो उसका त्याग कर उस मूर्छा का कुछ फल नहीं है। संसार में कभी भी शरणत्व आदि प्राप्त होना नहीं है और अविचारता के बिना इस संसार में मोह होना योग्य नहीं है। जो मोह अनंत जन्म मरण का और प्रत्यक्ष दुख का हेतु है, दुख और क्लेश का बीज है, उसे शांत कर, उसका क्षय कर। कितना लंबा वाक्य है पूरा, तो क्या कहते हैं कि जो विचारवान जीव होता है या मुमुक्षु जीव होता है उसको तो प्रतिबोध होता है। इस प्रसंग है वो खुद ही बोध का कारण बनता है। प्रतिबोध होता है मतलब यह प्रसंग खुद ही बोध का कारण बनता है। उसमें क्या बोध होता है कि जो सर्वसंग की अशरणता है, कोई भी संयोग इस जीव को शरण देने वाला नहीं है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान होता है। सब बचाना चाहते थे लेकिन कोई बचा सके नहीं, न परिवार वाले बचा सके, न संपत्ति बचा सके, न कोई सत्ता थी तो वो बचा सके, कोई चीज भी उसको बचा सकती नहीं है। ये अशरणता का अनुभव होता है और बंधुता, मैंने किसी की मदद भी नहीं पहुंचती। जो बंधु होता है, बांधव होता है, वो मदद करता है, किसी की मदद नहीं पहुंची। अनित्यता, हमेशा हमेश के लिए जो संयोग के बीच में रहना चाहता था, न उसको परिवार छोड़ना था, न उसको घर छोड़ना था, न उसको गांव छोड़ना था, न देश छोड़ना था, लेकिन सबको छोड़ना पड़ा क्योंकि सब संयोग अनित्य है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है वहां। और तुच्छता, जो चीज बचा नहीं सके, काम में आ नहीं सके, वो तुच्छ है, इसका तो कोई कीमत, क्या कीमत है इसकी, फिर
कुछ नहीं,
इसकी फिर कोई कीमत नहीं है। और अन्यत्व भाव और भिन्नपणा, अन्यत्व माने
भिन्नपणा,
वो बात चल रही थी कि सर्व से, सर्व प्रकार से मैं भिन्न ज्ञानमय हूँ, उसका प्रतिबोध वहां होता है, अच्छी तरह से बोध होता है। विचारवान जीव को तो ये बोध का कारण बनता है। कि हे जीव, तुझे कुछ भी इस संसार में उदय आदि भाव से भी मूर्छा रहती हो, इतना मोह हो कि तू अपने स्वरूप को भूल जाए, ऐसा प्रकार बनता है उदय के कारण से कि मैं आत्मा हूँ यही भूल जाता हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ, ये घर का धनी हूँ, ये परिवार में इतना इतना संबंध वाला हूँ, ये उदय भाव में अपने स्वरूप को जो भूलता है उसको कहते हैं कि मूर्छा हो गई। इस मूर्छा का त्याग कर छोड़ दे। इस मूर्छा ने दो दफे किया है, करुणा से कहा है दो दफे कि उनको तुम छोड़ दो। उस मूर्छा का कुछ फल नहीं है, मूर्छा करोगे तो कोई लाभ हो जाएगा ये तो बनने वाला है नहीं, मूर्छा से कोई फल प्राप्ति होगी, मूर्छा के अनुकूल परिस्थिति बने तो फल आया ऐसा समझो, लेकिन जो गया वो वापस आने वाला नहीं है, कभी वापस आने वाला नहीं है और कभी मिलने वाला भी नहीं है। अरे इसका एड्रेस पता भी मिलता नहीं है, कौन कहाँ गया उसका कोई पता मिलता नहीं है,
है?
हाँ, पहचान भी नहीं होगी और मानने को तैयार भी जीव नहीं होंगे, ये बात हो जाएगी। तो उस मूर्छा का कोई फल नहीं है। संसार में कभी भी शरणत्व आदि, शरणत्व बंधुता नित्यता अभेदता एकता कुछ भी आदि में सब ले लेना, वो संसार में कभी भी प्राप्त होने वाली नहीं है। संसार में कभी भी शरणत्व आदि प्राप्त होना नहीं है और अविचारता के बिना इस संसार में मोह होना योग्य भी नहीं है। जो भी मोह होता है, मूर्छा होती है, वो जीव का अविचारीपना है। अविचारीपना इसलिए कहते हैं कि जीव को ये दुख का कारण बनता है, वर्तमान में भी दुख का कारण है और भविष्य में भी दुख का ही कारण है। हाँ, ये खास ये तो प्रसंगी भावना का, वैराग्य के उत्पन्न करने वाली जो बार भावना है वही प्रसंग है, जो देह छूटने का प्रसंग है वो तो वैराग्य का ही प्रसंग है। तो उस वक्त जो मोह होता है, दुख होता है, वो अविचारिकता के कारण किसे होता है, और यह मोह अनंत जन्म मरण का और प्रत्यक्ष खेद का हेतु है, ये अनंत जन्म मरण का कारण है। क्योंकि जो संयोग छूटा, जिसका देहांत हो गया, तो उस व्यक्ति का संयोग छूटा और उसका वियोग का दुख होता है। अब वियोग का दुख में उसका संयोग चाहता है तो उसको जन्म मरण का कारण बनेगा, नया नया संयोग मिलाएगा। जन्म मरण का कारण मैंने नए नए कुटुंब, नए नए परिवार, तो उसने वही भावना भाई, जैसी मति वैसी गति, तो अनंत जन्म मरण का कारण बनेगा और वर्तमान में प्रत्यक्ष दुख का कारण बनता है। दुख और क्लेश का बीज है, यही बीज है अपनत्व करना, वही दुख और क्लेश का बीज है। अपनापना किया, यही दुख पहुंचाएगा, उसे शांत कर। ऐसे परिणामों को तुम सही समझ से, सही ज्ञान से, सही बोध से तुम शांत करो, उसका क्षय करो और ऐसे परिणामों का नाश कर दो। हे जीव, इसके बिना अन्य कोई हितकारी उपाय नहीं है। ऐसे किए बिना, सही रास्ता पकड़े बिना और सही समझ किए बिना कोई हितकारी उपाय नहीं है। सुख का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। दूसरा कोई उपाय करने को जाओगे तो कोई है ही नहीं, क्या करोगे इत्यादि। भावितात्मता से वैराग्य को शुद्ध और निश्चल करता है कौन? विचारवान जीव, मुमुक्षु जीव होता है, विचारवान जीव होता है वो। तो भावित आत्मता से आत्मा को भावित करता है यानी भाता है, उसको भावित आत्मता कहने में आता है। वो शब्द संयोजन अपना स्वतंत्र है कृपा देव का। आत्मा को भाना, आत्मभावना में आना, उसको भावित आत्मता कहते हैं। आत्मा को भाते भाते वैराग्य को शुद्ध मैंने निर्मल करता है और निश्चल करता है, पक्का करता है। वैराग्य को निर्मल करता है आत्मा को भा करके, वैराग्य को भी, वैराग्य के परिणाम को भी निर्मल करता है और निश्चल करता है। मुमुक्षु जीव तो देह छूटने के पहले ही सब तैयारी कर लेता है, संयोग में ही वियोग की तैयारी कर लेता है। तो वियोग आने पर उसको फिर उतनी असर पहुंचती नहीं है, उसकी आत्मभावना बढ़ जाती है, वैराग्य बढ़ जाता है। तो उसको ये देह छूटने का, संयोग छूटने का दुख होता नहीं है, या बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत अल्प मात्रा में होता है। ये बात पहले प्रसंग बने मृत्यु का किसी का तब ये करे ऐसी बात नहीं है। इसके पहले ही ये अशरणता, अबंधुता, अनित्यता, असारता, तुच्छता और अन्यपना, ये सब भावना को भाने लगता है। संयोग में ही इस भावना को दृढ़ करता है। तो वियोग की तैयारी तो होगी, पहले से ही हो गई, ऐसा करता है। हाँ, आत्मभावना तो है ही, हर वक्त करने लायक है। कभी मृत्यु का प्रसंग बने तभी करने लायक है, नहीं हर वक्त करने लायक है ही। लाभकारी कारण है भावना, तो भावना बढ़ाना। हाँ, भावितात्मता से इसलिए आत्मा को भाते भाते वैराग्य को निर्मल करता है, शुद्ध करता है और निश्चल मैंने पक्का करता है, नहीं छूटे वैसा करता है। निश्चल मैंने चलित नहीं हुए, किसी भी हंसी खुशी के प्रसंग में वैराग्य को, वैराग्य चला जाए ऐसा नहीं करता, निश्चल वैराग्य होता है। हाँ, ये तो ज्ञान गर्भित है, दुख गर्भित नहीं। दुख गर्भित भी वैराग्य होता है, मान गर्भित भी वैराग्य होता है, लोभ गर्भित भी वैराग्य होता है ऐसे, और द्वेष क्रोध गर्भित भी वैराग्य होता है। दुख मैंने क्रोध गर्भित, चारों प्रकृति से वैराग्य तो होता है, वो वैराग्य यथार्थ नहीं है, वो यथार्थ वैराग्य नहीं है। आत्मभावना पूर्वक जो होता है, आत्मकल्याण की भावना पूर्वक जो होता है वो सही होता है, यथार्थ होता है। पर उसके दो पहलू हैं, अस्थि और नास्तिक। अस्थि में स्वरूप की भावना है, नास्ति में ये अनित्यता आदि दूसरे पदार्थ के चिंतन के साथ भावना होती है कि ये संयोग मेरे से अनित्य है, भिन्न है, असरण रूप है, ये सब प्रकार का और असार है, ये सब नास्ति वाली भावना है। हाँ, हाँ वो ज्ञान भी निर्मल है, परिणाम में निर्मलता छा जाएगी। वैराग्य ज्ञान भी निर्मल, वैराग्य भी निर्मल, ज्ञान भी निश्चल, वैराग्य भी निश्चल। मुमुक्षु की भूमिका में निरस्ता ही होती है। कोई विशेष वैराग्यवान को त्याग भी होता है, त्याग हुए ही नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन निरस्ता आ जाए तो भी उस भूमिका में पर्याप्त है। त्याग नहीं हुए फिर भी निरस्ता आ जाए तो ये भूमिका का कार्य उसने किया। हाँ, संसार के उदय भाव में उदासीनता निरस्ता आनी जरूरी है, होनी जरूरी है। इंद्रियां कमाई तो बनता है, उदय भाव में तो बनता है और दुर्गति में चला जाता है, वहां निरस्ता आ जाए वही ठीक। हाँ मैंने और शुद्ध हो गए और बढ़े निरस्ता, वैराग्य और बढ़े। जैसे ये क्लेश कषाय गर्भित जो निरस्ता है या वैराग्य है वो निर्मल नहीं है, जबकि आत्मभावना पूर्वक होता है वो वैराग्य निर्मल होता है। और दुख गर्भित जो होता है वो वैराग्य, वैराग्य होने पर भी निर्मल वैराग्य नहीं है। मान गर्भित होता है वो भी निर्मल वैराग्य नहीं है। हाँ वो तो वो वैराग्य है ही नहीं वास्तव में, वो तो दबा हुआ कषाय है, रुंधायेलो कषाय। बेन श्री नाम इतना अमृत मायु ने आपने लिया था चार नंबर में, रुंधायेलो कषाय वो दिया था स्वाध्याय में आ गया। इनके पिताजी का देह छूटा है, ये सुंदरदास का है और माणिकचंद भाई को पत्र लिखा है। और यहाँ श्री माणिकचंद के देह छूट जाने का समाचार जाने देखो 29 साल 30 साल 1 साल के बाद मक्सर महीनो और विशाख महीनो 6-8 महीना पछी जेने पत्र लिखो थे एनो देह छूटी गयो छे। श्री माणिकचंद की देह के छूट जाने के समाचार जाने। सभी देहधारी जीव मरण के समीप शरण रहित है। जितने भी देहधारी जीव है वो मरण के पास तो शरण रहित है, मृत्यु के पास किसी का शरण, किसी को शरण मिलता जो भी देहधारी है उसका देह छूटना निश्चित है। मात्र उस देह के यथार्थ स्वरूप को पहले से जानकर कि ये रहने वाला नहीं है, जितने भी सार संभाल करे। हाँ वो एक जमाने में, जो पहले के जमाने में श्रीमंत सेठ लोग राजा लोग थे, वो क्या करते हैं कि घर में औषधशाला रखते थे, औषधि घर में बनाना, बाजार से दवाई नहीं लाना, हर प्रकार की औषधि घर में बनाना, वेदों को घर में रखे नौकरी में। राजा के मां तो वेद का भी नौकरी होता है ना, तो वो घर में वो सब प्रकार की औषधि बनाए, उसमें सोने की भस्म बनाए, चांदी की भस्म बनाए, तांबे की भस्म बनाए, अभ्रक भस्म बनाए, मोती की, परवाले की, हीरे की, सब प्रकार के भस्म बनाए। उस जमाने में हजारों रुपया तोला में लेनी पड़े ऐसी भस्म बनाए। ये अपने भगवान दास जी बनाए, बनाते थे सागर वाले एसिड जो आते हैं सोनगढ़, वो प्रेस वैसे वाले थे, तो उसे सारा घर में रखते थे वहाँ, और 5-5 हज़ार तोला, 5-5 हज़ार रुपया तोले के भस्म वो खाते थे, फिर भी बुढ़ापा आए बिना नहीं रहता, छोटी उम्र से भस्म खाए, युवानी में भी खाए, तो भी बुढ़ापा आए बिना नहीं रहेगा, और मृत्यु भी आए बिना नहीं रहेगा, तो सब मरण के समीप तो सब शरण रहित है। मात्र उस देह के यथार्थ स्वरूप को मैंने, उसका संयोग अनित्य है ऐसा पहले से जान करके, उसके ममत्व का छेदन करके, निज स्थिरता को अथवा ज्ञानी के मार्ग की यथार्थ प्रतीति को प्राप्त हुए हैं, वे ही जीव उस मरण काल में शरण सहित होकर प्राय फिर से देह धारण नहीं करते। देखो ये उपाय है इसका, क्या कहा कि पहले तो ममत्व है अनादि का, उसको छोड़े और निज स्थिरता को, स्वरूप की स्थिरता को धारण करे, या ज्ञानी के मार्ग की यथार्थ प्रतीति को प्राप्त हुए हैं, ज्ञानी ऐसे मार्ग पर चले हैं, ज्ञानी ने ऐसा उपाय बताया है, उसको ज्ञानी के मार्ग की यथार्थ प्रतीति ऐसा विश्वास आया हो, हाँ वो पहले संकेत है ज्ञानी और ज्ञानी के मार्ग, उसको प्रतीति को प्राप्त हुए हैं, वे जी उस मरण काल में शरण सहित होते हैं, उसको ये बोध मिला या ज्ञानी का शरण मिला या शाश्वत आत्मा का शरण मिला, वही जीव प्राय देह धारण नहीं करते, अथवा मरण काल में देह के ममत्व भाव की अल्पता होने से भी निर्भय रहते हैं, तो उसको जो मृत्यु का भय है वो अल्प हो जाएगा, मुमुक्षु जीव को उतनी तैयारी होगी तो मरण काल में देह का ममत्व भाव अल्प हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा, तो निर्भय हो जाएंगे, मृत्यु का भय उसको लगेगा नहीं। देह छूटने का काल अनियत होने से निश्चित नहीं है, परंतु को पहले पुत्र चला गया, 8 महीने के पहले उसका पुत्र चला गया, 8 महीने के बाद खुद ही चला गया, तो देह छूटने का काल अनियत होने से विचारवान पुरुष अप्रमाद भाव से पहले से ही उसका ममत्व को निवृत्त करके अविरुद्ध उपाय का साधन करते हैं, विचारवान तो पहले से तैयारी करते हैं, तृषा लगे तब कुआ खोदना वो तो विवेक वाली बात नहीं है, वो तो कुआ खोदते खोदते तृषा से मर जाएगा, इसलिए कुआ पानी तो पहले से पानी का व्यवस्था रखना, तृषा लगे तो पानी पी ले, ऐसे जो विचारवान है वो तो मरण काल में देह के ममत्व, वो तो देह के छूटने का काल अनियत है ऐसा जान करके, कभी भी मृत्यु आ सकती है, एक्सीडेंट से भी मृत्यु होती है या किसी भी कारण से, बिना कारण भी मृत्यु होती है, क्यों, तो वो तो आयु पूरा हो गया, बात करते करते चला जाएगा, लड्डू खाते खाते भी चला जाएगा, हाँ उनको तो हार्ट डिजीज भी था, एक बहाना भी था कोई हार्ट अटैक आ गया, कोई अटैक बटैक कुछ नहीं आए, ऐसे उबासी खाए और उबासी खाते खाते, उबासी मतलब अपने बगासू, बगासू खाए नहीं, बगासू खाते खाते बगासू पर मोटू पड़ो रही जाए, मोटू खोलू ही भेगू न थाय, हाँ तंदुरुस्त, हाँ वो तो बीमार मार तो मरे हैं, उसमें क्या है, तंदुरुस्त आदमी लाल बूंदी जैसा चनौती, हाँ लाल चनौती जो शरीर हो, बगैर सुखाता खाता भी हो जाए, बोलो ऐसा कैसे बनता है? શ્વાસ ઉપડ્યો એટલું તો બીનું ને, હા તો કાંઈ ખબર ન પડે. વાત કરતા કરતા ચાલુ મોટરમાં, ચાલુ ટ્રેનમાં, ચાલુ પ્લેનમાં, ગમે ત્યાં વાત કરતા કરતા ખલાસ. એવા કેસ બને છે? યુવાન ઉંમર હોય, લાલ બુંદી જેવું શરીર હોય, વાત કરતા કરતા બી હોય જાય માણસ. હા, આયુષ પૂરું થવાનો સમય આવે, કોઈ બનાની જરૂર નથી, દેહના હાથમાં છૂટા પડી જાય. ખરાબ અનિયત કાળ છે, કોઈ ચોક્કસ આટલું આયુષ થાય પછી જ મરે એવું કોઈ નિયમ નથી. કોઈ તો મનુષ્યયુ એટલું અલ્પું બાંધે છે કે માતાના ગર્ભમાં મરે, કોઈ જન્મતા મેં જ મરે, કોઈ કેટલાક દિવસોમાં, કોઈ કેટલાક મહિનામાં, કોઈ કેટલાક વર્ષમાં, કાંઈ ઠેકાણું નહીં. એસા કહેતા દેહ કા પાલ અનિયત હોને છે, વિચારવાન પુરુષ અપ્રમાદ ભાવ સે પહેલે સે હી પ્રમાદ કિયે બિના. એડવાન્સ મેં પહેલે સે મેને પહેલે સે એડવાન્સ મેં હી ઉસકે મમત્વ કો નિવૃત્ત કરકે દેહ કી મમતા છોડ કરકે અવિરુદ્ધ ઉપાય કા સાધન કરતે હૈ. અવિરુદ્ધ મેને સરળ ઉપાય જો ભી હૈ, વિરુદ્ધ નહીં હૈ એસા ઉપાય હૈ, ઉસકા સાધન કરતે હૈ. ઓર યહી આપકો હમે ઓર સબકો ધ્યાન રખના યોગ્ય હૈ. એ સબકે લીએ એક હી કાનૂન હૈ, સબકો ધ્યાન રખને કી બાત હૈ. પ્રીતિ બંધન સે ખેદ હોના યોગ્ય હૈ, જિસકો પ્રીતિ હૈ ઉસકો તો દુઃખ હોગા હોગા ઓર હોગા. તથાપિ ઇસમે દૂસરા કોઈ ઉપાય ન હોને સે ખેદ કરો નહીં કરો, દૂસરા કોઈ ઉપાય નહીં હૈ. ઉસ ખેદ કો વૈરાગ્ય રૂપ મેં પરિણમન કરના, સહી વૈરાગ્ય મેં, નિર્મલ વૈરાગ્ય મેં પરિણમન કરના, યહી વિચારવાન કા કર્તવ્ય હૈ. વહી બાત ચલતા હૈ, વૈરાગ્ય કો નિર્મલ કરના. વિચારવાન કહો યા મુમુક્ષુ કો, યહી ઉસકા કર્તવ્ય હૈ. इस जीव को देह संबंध होकर मृत्यु न होती. आगे का पैराग्राफ के इस जीव को देह संबंध होकर बाद मृत्यु नहीं होती, न होती तो इस संसार के सिवा अन्यत्र अपनी वृत्ति का लगाने का अभिप्राय नहीं होता. जो ये अभिप्राय की मुख्यता से बात किया, મેં તો મરને વાલા હું નહીં, તો ઇસકી જો સંસાર કી દોડ હૈ વો રુકને વાલી નહીં થી, લેકિન મૃત્યુ ઉસકો ભાન કરાતા હૈ, દેખ ચલા જાયેગા તો તું કિતના ભી કર, જો ભી કુછ કર, જીતના ભી કર, તુમકો યે સબ છોડ કો જાના હૈ, સબકો છોડ કે જાના હૈ. અબ દેખ ક્યા ફાયદા હૈ ઇસે, સબ તેરા પરિશ્રમ નિકમમાં જાયગા. દોડત દોડત દોડ્યો જેતી મન કી દોડ, કિતના ભી દોડ લગાયા હો સબ વ્યર્થ ચલા જાયગા, કુછ હાથ મેં આને વાલા નહીં. વો જો વિચારવાન હૈ વો કુછ કામ કર લેતા હૈ, વરના ઉસ વક્ત જો દુઃખ હોગા વો દુઃખ બરદાસ્ત કરને લાયક નહીં હોગા, અસહ્ય દુઃખ હોગા. કહેતે હૈ કે દેહ સંબંધ હોકર અગર મૃત્યુ ન હોતી તો કોઈ પરમાર્થ કા વિચાર ભી નહીં કરતા, ઇતની દોડ લગાતા. કુછ કુછ જીવ જો આત્મકલ્યાણ કા વિચાર કરતા હૈ, અચ્છા હૈ કે મૃત્યુ આતી હૈ, એ મૃત્યુ કા ઉપકાર સમજો. अगर नहीं आते तो ये संसार की मोहनी जो है वो पीछे मुड़ के वो देखता नहीं, ऐसा वेग में चला जाता, आवेग में रहता वो।
जिन्हें मुसीबत में मित्रता हो,
हाँ, वो भले सुख से सोए। अभिप्राय फिर अन्यत्र अभिप्राय नहीं होता। मुख्यतः मृत्यु के भय ने परमार्थ रूप दूसरे स्थान में वृत्ति को प्रेरित किया है, कि मृत्यु का भय है वो परमार्थ के दिशा में जीव को प्रेरणा देता है। देखो भाई तुम चला जाएगा, कुछ तुझे करना हो तो तेरा कुछ आत्मकल्याण कर ले। अनंत काल में अनंत परिश्रम किया, संसार के संयोग को टिकाना, निभाना, प्राप्त करना, इसके लिए अनंत काल में अनंत प्रयत्न किया। आज इस क्या काम का है आज?
कुछ नहीं।
इसके कारण से दुखी हुआ, उस वक्त भी दुखी हुआ, उसके फल में भी दुखी हुआ। इसके सिवा कोई काम इससे सार्थक हुआ
नहीं।
दुख के लिए सार्थक हुआ, किया सुख के लिए और हुआ दुख के लिए, ऐसा बना है। अब विवेक करना है। कि जल के पीछे दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं, वैसे ही संसार के दौड़ लगाते लगाते मर जाते हैं। कभी 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 भी मृत्यु आ जाती है और चला जाता है किसी भी उम्र में। कोई विरल जीव है उसको प्रेरणा मृत्यु की होती है कि नहीं, मृत्यु आएगी इसके पहले मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो प्रेरणा भी किसी विरले जीव को ही प्रेरित हुई है। बहुत से जीवों को तो बाह्य निमित्त से मृत्यु भय के कारण बाह्य क्षणिक वैराग्य प्राप्त होकर विशेष कार्यकारी हुए बिना यह वैराग्य नाश को प्राप्त हो जाता है। देखो बहुत से जीवों को, मैंने करीब करीब लगभग सब जीवों को ये मृत्यु का निमित्त मिलता है संसार में, उसको हर साल एक दो दफे स्मशान में जाना पड़ता है किसी न किसी सगे संबंधी के कारण से। उस वक्त उसको वैराग्य भी थोड़ा बहुत आता है, क्षणिक। कैसा आता है वो? क्षणिक वैराग्य को प्राप्त करता है उस वक्त वैराग्य आता है, उसको स्मशान वैराग्य भी कहने में आता है। स्मशान में वैराग्य का थोड़े परिणाम होता है, बाहर निकला कि वैसा का
वैसा।
और आजकल तो स्मशान में भी लोगों को वैराग्य आता नहीं है, लोग लाद से जाते हैं। और वहां भी शेर बाजार की कथा चलती है, डॉक्टर है तो दर्दी की कथा चलती है, वकील है तो कोर्ट की कथा
चलती है,
या कोई लड़के लड़की की सगाई की भी चलती है। वैराग्य का नाम निशान नहीं है। अभी उधर मुर्दा जलता है, उधर शादी की बात सगाई की बात चलती हो, ऐसा होता है। कई लोगों को तो उतना वैराग्य भी नहीं आता है। हाँ, मतलब आजकल जो है परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति भी बहुत गड़बड़ वाली दिखने में, प्रत्यक्ष दिखने में आती है। वहां ऐसी ऐसी चर्चा चलती है। कहते हैं कि क्षणिक वैराग्य प्राप्त होकर वो वैराग्य विशेष कार्यकारी हुए बिना, आत्मकल्याण के रास्ते में गए बिना ही वो वैराग्य समाप्त हो जाता है। मात्र किसी एक विचारवान, कुछ एक विचारवान जो होते हैं उनको, अथवा सुलभ बुद्धि, सुलभ बुद्धि को, जिसको बोध सुलभता से असर करता है, जल्दी असर करता है, ऐसा, या लघुकर्मी जीव को, मरुकर्मी अपने गुजराती में, लघु कर्म मैंने भारी कर्म नहीं है, इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ कि जिसको क्षणिक वैराग्य होता है और वो वैराग्य मिट जाता है, चला जाता है, उड़ जाता है, ये भारे कर्मी है। कैसे हैं? भारे कर्मी है। उसको बहुत परिभ्रमण बाकी है तो वैराग्य के प्रसंग में भी उसको वैराग्य होता नहीं है, क्षणिक वैराग्य होता है। लेकिन कुछ एक विचारवान जीव, मुमुक्षु जीव होता है, अथवा कोई सुलभ बुद्धि जीव होता है या हड़ुकर्मी होता है, ऐसे जीव को उस भय से अविनाशी निश्रेष पद के प्रति वृत्ति होती है। उसको लगता है कि ये क्या, बस ये मृत्यु का दुख भोगना ही पड़ेगा। कितना कितना ज्यादा दुख है, कितना अधिक दुख है जो सहा नहीं जाता है, असह्य लगता है, तो क्या ये भोगना ही पड़े, इसका कोई इलाज नहीं होगा। हम शाश्वत रहना चाहते हैं, ये संसार में भी हम कोई संयोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो कोई शाश्वत पद होगा ही नहीं, कोई शाश्वत स्थिति आत्मा की होगी ही नहीं। ऐसे उनको शाश्वत अविनाशी, अविनाशी मैंने शाश्वत निश्रेयस मैंने कल्याणकारी, श्रेय मैंने कल्याण और नि मैंने विशेष रूप से कल्याणकारी पद की प्रति, इसके पद के प्रति वृत्ति होती है। वो पद कैसा है, कौन सा है, वो मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा होना जरूरी है, ये आवश्यकता उसको महसूस होती है तो उसकी खोज होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, उनको ये जरूरत लगती है कि नहीं नहीं ये बार बार दुखी होना इस वो हम चाहते नहीं है, जरूरी है कि ऐसा दुखी नहीं हो गए, हम ऐसा दुख हमको नहीं हुए वो जरूरी है। उस जरूरत में से उसको शाश्वत पद के प्रति वृत्ति जाती है कि कोई शाश्वत ऐसा स्थान ढूंढ लेना चाहिए कि जहां मृत्यु की भी पहुंच नहीं हो, और वही ज्ञानी का मार्ग है। यही ज्ञानी का मार्ग है कि उस मार्ग मिलने पर मृत्यु की भी पहुंच वहां होती नहीं है। अरे मृत्यु तो महोत्सव बन के आता है वहां, वहां तो मृत्यु महोत्सव बन के आता है, दुख का कारण बन के नहीं आता है, महोत्सव बन के आता है, उपकारी होता है,
साधना में उग्र होता है।
और उग्रता से अपना साधना में आराधना में जीव उस समय में लगता है और बहुत निर्जरा करके विशेष रूप से आत्मकल्याण में प्रगति कर लेता है। ऐसा भी उपाय है विश्व में, ऐसा भी उपाय है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, मरना ही पड़े बार बार, और बार बार वो मृत्यु के कारण से असह्य दुख भोगना ही पड़े, वो कोई जरूरी नहीं है, इसका भी इलाज है। और वो इलाज महात्माओं ने, ज्ञानियों ने ढूंढा है, प्राप्त किया है, और जगत का उसको बोध भी वो दे करके आगे चले गए, इसका उपदेश भी दिया है। जिसको जरूरत लगेगी वो उसी दिशा में प्रयत्न पुरुषार्थ करेगा, उद्यम करेगा, जरूरत लगेगी तो, नहीं लगे उसका तो कोई उपाय तो संसार के दौड़ में दौड़ता रहेगा और परिभ्रमण करता रहेगा। हाँ, मोक्ष में से कोई किसी न किसी जीव को ज्ञान प्राप्ति होती रहेगी, धर्मात्मा होते रहेंगे, और जो भी पात्र है या निकट भवी है उनको इसका लाभ मिलता रहेगा। जिसको अपनी दरकार है वो तो अंदर में तैयार, अभी से तैयारी करना लगेगा। करने लगेगा अप्रमाद रूप से, वो प्रमाद करेगा
नहीं,
उसको नींद नहीं आएगी आराम से, चैन से नींद नहीं आएगी, नहीं मेरा मुझे कर लेना है, मुझे मेरा कार्य कर लेना है, ये तालावेली, ये लगन, ये चटपटी उसको लगेगी और उसका कार्य हो भी जाएगा। ये मार्ग में ये अच्छी बात है कि जो करना चाहता है उसका हो ही जाता है, उसको फेलियर नहीं मिलता है, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ तक रखें।